والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارذل العمر. اللہ تعالیٰ ہی نے تم سب کو پیدا کیا، وہی پھر تمہیں فوت کرے گا. تم میں ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانے. بے شک اللہ تعالیٰ دانا اور توانا ہے. اللہ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق کے معاملے میں زیادتی دے رکھی ہے، بس جنہیں زیادتی دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں؟ یہ تھی آیت نمبر 70 اور 71. اس کے دو ٹاپک لکھیں گے. پہلا ٹاپک ہے اس کا، یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کھول دی جو ہم ہر دن اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ عموماً موت کے لیے وقت کا کوئی تقاضا نہیں، لیکن اگر کسی کو لمبی عمر مل بھی جاتی ہے تو بعض دفعہ وہ عمر اس کی کیسی ہو جاتی ہے کہ ارزل عمر آنے لگتی ہے. اور وہ کون سی عمر ہوتی ہے کہ جب ساری یاد کی ہوئی باتیں بھولنے لگتی ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ انسان پھر اپنے آپ کو بالکل انہی بچوں کی صف میں کھڑا کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوتا ہے. بچہ آپ دیکھیے کہ یہاں ارزل عمر کی بات کی اور ساتھ ہی کہہ دیا لکھے لا یعلم بعد علم شیئا. ہم اگر ایک ہلکا سے تقابل کر کے دیکھیں کہ بوڑھوں اور بچوں کے بیچ میں کیا ہوتا ہے، تقابل کیا جا سکتا ہے. اور ارزل عمر تقریباً 60-70 کے بعد کی عمر ہوتی ہے کہ جب ہوش گم ہونے لگتا ہے، جب انسان کی یادداشت چلی جاتی ہے، اس کے دانت گرنے لگتے ہیں، بعد جب اس کے بال دوبارہ کالے ہونے لگتے ہیں، حافظہ کمزور ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ جس طرح بچے بے صبرے ہوتے ہیں، بعض دفعہ انسان بڑھاپے میں بے صبرا ہونے لگتا ہے. جس طرح بچوں کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ایک ارزل عمر کے شخص کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ بار بار اس کو دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ بہت زیادہ ایک وقت میں وہ نہیں کھا سکتے، پھر بھول لاحق ہونے لگتی ہے، بچوں کی بھی عادت ہے. پھر اس طرح آپ دیکھیے کہ بعض بوڑھے جو ہوتے ہیں نا، وہ کھلونوں سے کھیلنے لگتے ہیں. آپ نوٹ کریں، جن گھروں میں بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، وہ چھوٹے بچوں کے کھلونوں کے ساتھ بیٹھے ادھر دیکھ رہے ہیں. بعض دفعہ وہ بھی ٹی وی پہ ایسی چیزیں دیکھنے لگتے ہیں جو بچوں کی دیکھنے والی ہوتی ہیں. تقابل کرتے جائیں گے، آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی. جھکنے لگتے ہیں، بچہ بھی ایک جب چلتا ہے تو اس وقت بالکل کھڑا ہو کے نہیں چلتا. اسی طرح جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی عموماً دیکھیے کہ ان کی کمر میں جھکاؤ آنے لگتا ہے. لیکن صرف سوچنے کی بات ہے کہ جو ایک گھر میں ایک بچے کی انٹرٹینمنٹ ہے، جو اس کے لاڈ دیکھے جاتے ہیں، کیا کسی بزرگ کے بھی وہی دیکھے جاتے ہیں؟ بچے کا بولنا کتنا پیارا لگے اور بوڑھے باپ یا دادا کا بولنا کیسا لگے. پھر اس وقت کیا ہوتا ہے، ایسی بہوؤں کو بھی دیکھا گیا کہ جو ان کو بند کمروں میں بند کر کے چلی جاتی ہیں کہ ان کی تو عادت ہے، ان کو تو چھوڑ دیں. اور اس طرح کھانا ان کے آگے ڈالا جاتا ہے کہ جیسے شاید کسی جانور کے آگے ڈالا جائے کہ بھوک لگے گی تو کھا لیں گے. دیکھیے، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہم نے کتنا جینا ہے. جب ہم اپنے لیے لمبی عمر کی دعائیں مانگتے ہیں نا، تو اس میں ہم اپنے لیے اصل میں ارزل عمر کی بھی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے ایک دعا بھی سکھائی تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، کہ میں ارزل عمر سے پناہ مانگتا ہوں کہ جب انسان اس سٹیج پہ چلا جائے کہ لوگ اس کے جانے کی دعائیں کرنے لگے، آنکھیں لگی رہیں ہر وقت، کان سننے کے لیے تیار ہو کہ کب پتہ چلے گا کہ فلاں کا بلاوا آ گیا. لیکن اگر ہم میں سے کسی کے گھروں میں، کسی کے قریب کوئی ایسا بزرگ رہتا ہے، تو اس کو اللہ کا ایک تحفہ سمجھیے، ایک نعمت سمجھیے. اس کے وہی لاڈ کیجیے جو کہ آپ اپنے بچوں کے لاڈ کرتے ہیں. پتہ نہیں وہ کتنے دن رہیں گے، لیکن ان کی دعائیں آپ کو ملیں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں تمہارے ضعیف لوگوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. آج ہم کہتے ہیں یہ بوڑھے ابا یہ اماں، ان کی دوائیوں پہ اتنا خرچ ہوتا ہے. یہ تو پتہ تب چلے گا جب یہ اماں اور ابا نہیں رہیں گے کہ آپ کی پے میں ایک دم کمی ہو جائے گی، آپ کی ارد گرد چیزیں اور مہنگی ہونے لگیں گی، اکانومی ڈوبنے لگے گی. اگر آج 1,000 ان کی دوائیوں پہ لگتا ہے، تو کیا پتہ کہ اللہ ان کی وجہ سے آپ کو 2,000 کی پے بھی دلوا رہا ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. پھر دوسری چیز رزق کی کمی اور بیشی کی تھی. اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سمپل طریقے سے یہ بات بتا دی کہ تمہارے پاس کچھ مال ہو اور تم نہیں چاہتے کہ آدھا مال میں اپنے ملازم کو دے دوں تاکہ اس کا بھی گھر میرے جیسا بن جائے. ہم کیوں کریں گے؟ ہم کہیں گے پھر تو یہ میری بات ہی نہیں سنیں گے، یہ تو سر پہ چڑھ جائیں گے، ان کو تو ذرا کھل کے دینے لگو تو ان کے تقاضے بڑھنے لگتے ہیں. کہا اچھا جب تم یہ نہیں کرو گے تو یہ بتاؤ کہ کیا اللہ نے بزرگوں کو رزق دے دیا، بزرگوں کے ہاتھ میں بچوں کے خزانے دے دیے کہ جو تم لوگوں کو دے دو؟ بات یہ ہے تم صرف اپنی طبیعت کو ہی دیکھ لو تو جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ تم اللہ کے لیے کیسے پسند کرتے ہو؟ پیچھے ہم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیدا ہونے کی بات کو دلیل بنا کے انسان کی فطرت کو جھنجھوڑا گیا کہ تمہیں تو بیٹیاں بری لگتی ہیں اور اللہ کی بیٹیاں بناتے ہو. اور یہاں آپ دیکھیے کہ یہ کتنی اپ ٹو ڈیٹ مثال دے دی کہ جس کے ناطے سے یہ بتا دیا کہ تم اپنے مال دوسروں کو نہیں دیتے تو اللہ اپنے اختیارات دوسروں کو کیسے دے گا. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین. اللہ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں. کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے؟ और अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हैं जो आसमानों और ज़मीन से इन्हें कुछ भी तो रोज़ी नहीं दे सकते और न वो कुछ कुदरत रखते हैं। बस अल्लाह ताला के लिए मिसालें मत बयान करो, अल्लाह ताला खूब जानता है, तुम नहीं जानते। तरबल्लाहु मसलन अब्द ममलूका, अल्लाह ताला एक मिसाल बयान फरमाता है कि एक गुलाम है दूसरे की मलकियत का जो किसी बात का इख्तियार नहीं रखता, और एक और शख्स है जिसे हमने अपने पास से माकूल रोजी दे रखी है जिससे वो खुले छुपे खर्च करता है। क्या ये सब बराबर हो सकते हैं? अल्लाह ताला ही के लिए सब तारीफ है बल्कि इनमें से अक्सर नहीं जानते। वदारब अल्लाहु मसल रजुलैन, अल्लाह एक और मिसाल बयान फरमाता है दो शख्सों की जिनमें एक तो गूंगा है और किसी चीज पर इख्तियार नहीं रखता बल्कि वो अपने मालिक पर बोझ है, कहीं भी उसे भेजे वो कुछ भी भलाई नहीं लाता। क्या ये और वो जो अदल का हुक्म करता है और है भी सीधी राह पर बराबर हो सकते हैं? हरगिज नहीं। तो मान जाओ कि वलिल्लाहि गैबुस्समावाति वलअर्ज, आसमानों और जमीन का गैब सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है, और क्यामत का अमर तो ऐसा है कि जैसे आंख का झपकना बल्कि इससे भी ज्यादा करीब। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। ये थी आयत नंबर 72 से 77, 72 से 77। इन आयात का टॉपिक है तौहीद और शिर्क को समझने की मिसालें। इन आयात में हम देख रहे थे कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म की मिसालें पेश की। पहली चीज यहाँ जो हमारे लिए अमल की और देखने की वो क्या है, और आप लोग हाईलाइट भी करेंगे कि वल्लाहु जाल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, ये है वो लफ्ज जो हम सबको अपने इख्तिसाब पर माइल करेगा, और वो क्या कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी हम जिन्स बीवियाँ पैदा की। अल्लाह ताला की ये कितनी बड़ी नेमत है कि उसने औरत के लिए मर्द को चूज किया। अब जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, हंसी की बात नहीं इसलिए मैं पसंद नहीं करूंगी कि आप सुन के हंसें, लेकिन आप सोचिए कि अगर एक औरत की शादी किसी घोड़े से हो जाए, किसी गधे से होने लगे, किसी बंदर से होने लगे, कैसा जोड़ लगे। हम जो नशुक्री की बातें करें, हमारे लिए ये कितना बड़ा नुकता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि उसने इंसान से इंसान की शादी की, लेकिन जब इंसान गिरने लगता है ना तो उसका हाल क्या होता है कि फिर वो जानवरों से भी शादी करने लगता है। एक ईमेल थी मेरे पास, किसी ने भेजी, पिक्चर्स भी थी और रिपोर्ट भी थी, एक मर्द की एक कुतिया के साथ शादी होती हुई दिखाई गई और एक दूसरे के गले में हाथ डालते हुए देखे गए, और जब उसके नीचे लिखी हुई बात थी तो पढ़ी तो उसमें पता चला कि कहने लगा कि मैंने पता नहीं कुछ साल पहले मैंने किसी कुत्ते को पत्थर मार दिया था, उसके बाद से मेरे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, और मुझे लोगों ने बताया कि कुत्ता खुदा, यानी उनके तो हर एक खुदा भी है ना, कि कुत्तों का खुदा तुमसे नाराज हो गया। अब तरीका यही है उसको खुश करने का कि एक कुतिया से शादी करो। और पूरी ऑरेंज कलर की साड़ी पहनाई हुई थी उसको। लकद खलकनल इंसान फी अहसनी तकवीम सुम्मा रददनाहु असफला साफिलीन, अल्लाह ने इंसान को आला तख्लीक पैदा किया था लेकिन इंसान जो है वो खराब होने लगता है। बस दफा हम भी नासमझी में इस किस्म की बातें करते हैं, दूसरों की बोली हुई बातें बोलते हैं, कानों के बोल ऐसे बनाए जाते हैं जहाँ शादी के लिए लड़की नहीं परियां ढूंढने की बात की जाती है। बात यह है कि जब बंदा कुरान के इल्म से दूर होता है ना तो मुझे लगता है कि यकीन करे वो दो कौड़ी का भी नहीं रहता। असल औकात आपको तब अपनी पता चलती है जब कुरान और सुन्नत की ग्लासेस आपकी आंखों पे लगते हैं। फिर दूसरी बात, जहां बेटों और पोतों की हुई, क्या बेटे के साथ पोता लक निशानी नहीं है? हमेशा ये बात सुनने को आती है कि बेटे से ज्यादा उसका बच्चा अच्छा लगता है, बेटी से ज्यादा बेटी के बच्चे प्यारे लगते हैं। ये अल्लाह की नेमत है। हफदा के लफ्ज को नोट कर लीजिए, ये पोते को कहते हैं ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, बेटी के बेटे के सब बच्चों को अरबी में हफदा कहते हैं। बच्चा पैदा होता है तो वो पूरे घर वालों की आंखों का तारा क्यों बनने लगता है? ये अल्लाह की दी हुई मोहब्बत है। अगर अल्लाह ताला ये मोहब्बतें ना डालें तो यकीन करें कि हम कभी भी एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार ना हो, हम उनके दुख सुख में काम ना आए। माएं कैसे बेटियों की डिलीवरी के वक्त में अपने आप को बेआराम करके उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को पालती हैं। ये अल्लाह की दी हुई नेमत है, और ये इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने इसको कुरान पाक में बता दिया कि देखो ये उसकी नेमत है। अगर अल्लाह ऐसी कोई नेमत दे तो उसकी कदरदानी भी करने की जरूरत है। फिर अगली बात इसमें हमने देखी थी कि लोग किस तरह अल्लाह ताला के साथ शिर्क करते हैं और अल्लाह ताला की इतनी प्यारी नेमतों को मिसयूज करते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि वो सब कुछ खत्म करते हैं। अगर एक दफा इंसान अल्लाह के बारे में गौर से सोच लेना, भूख लगती है तो खाने को खाना हाजिर है, जिस्म की जरूरत है तो उसके लिए बीवी मौजूद है, इंसान को सुकून चाहिए होता है, अल्लाह ताला बीवियों को पुरसकून चीज बना के आपके सामने पेश कर देता है। औलाद की तलब है इंसान की, ख्वाहिश में अल्लाह बेटों और पोतों की सूरत में पेश करता है। और कौन सा खुदा चाहिए था? कोई इस खुदा में कमी थी? ये जात ये रब इसको छोड़ के जब दूसरों को कब्रों में सोए हुए और फौतशुदा लोगों को और न जाने क्या जिंदा और मुर्दा देवी देवताओं को जब लोग पूछने लगते हैं, क्या इससे बड़ी भी कोई नाशुक्री होगी? इसलिए आप पूरे शौर से कह सकते हैं कि मुशरिक शख्स दुनिया का सबसे बड़ा नाशुक्रा शख्स है। जिसने अपने रब की कदर ना की वो किसी इंसान की भी कदर नहीं करेगा, सारी जिंदगी भी वहां खड़े रहेंगे। अगर अल्लाह ताला ना चाहेगा तो वो कुछ भी उनके हक में खैर का फैसला नहीं कर सकेंगे। तो हमारे लिए इस सारे हिस्से में अमल की बात यह है कि पिछले गुज़श्ता और मौजूदा शिर्क से तौबा करें। अल्लाह की जो बेकदरियां हमसे हो गई उसके ऊपर माफी मांगनी है, और आइंदा के लिए सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना है, और फिर उसके तकाजे पूरे करने की सारी जिंदगी कोशिश करनी है। आगे फरमाया, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैया, अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओ के पेटों से निकाला कि उस वक्त तुम कुछ भी तो नहीं जानते थे, इसी ने तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए कि तुम शुक्रगुजारी करो। ये है आयत नंबर 78। इसका उनवान है इंसान बेबसी की हालत में दुनिया में आता है। आप देखते हैं कि जब एक बच्चा दुनिया में आता है माँ का कितना मुख्ताज होता है, करवट भी नहीं बदल सकता, भूख लग जाए तो बता नहीं सकता, पेट में दर्द हो तो किसी को बता नहीं सकता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, मोहताजी कम होने लगती है, बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बैठने लगते हैं, हरकत करने लगते हैं, फिर एक वक्त आता है कि चलने फिरने लगते हैं, फिर भूख लगती है तो खाने लगते हैं। आप कह सकते हैं कि बच्चा जब दुनिया में आता है तो माँ के ऊपर बहुत डिपेंडेंट होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी मोहताजगी कम होके एक वक्त आता है कि फिर वो बिल्कुल ही हाथ से भी निकलने लगता है। लेकिन अल्लाह के लिए इंसान कितना मोहताज है, जितना पहले दिन था उतना ही दुनिया से जाते हुए भी। ये फर्क है माँ और अल्लाह के साथ ताल्लुक की। जो बंदा अल्लाह के सामने इतना मुख्ताज हो, इतना बेबस हो कि उसकी आंख काम करती है तो अल्लाह के हुक्म से करती है, उसका कान काम करता है तो अल्लाह के हुक्म से करता है, तो फिर इंसान को उस अल्लाह की बात कितनी मानने की जरूरत है। और जब इंसान अल्लाह की नहीं दी हुई नेमतों को नाफरमानियों में गुजारे, जब उसकी ये नेमतें सिर्फ दुनिया की चीजों को देखती रह जाए और आखिरत और गैब के मामला को ना देख सके, तो इससे बड़ी क्या नाशुक्री होगी। हम सबके लिए इसमें अमल की बात चाहिए कि देखना है कि हमारे कान और हमारी आंखें किन चीजों को देखने और सुनने में मसरूफ होते हैं। अवलम यरौ इल तईर, क्या इन लोगों ने इन परिंदों को नहीं देखा जो ताबे फरमान होकर फिजा में हैं, जिन्हें सिवाय अल्लाह के कोई और थामे हुए नहीं, बेशक इसमें ईमान लाने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी निशानियां हैं। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों में सुकूनत की जगह बना दी, और इसी ने तुम्हारे लिए चौपायों की खालों के घर बना दिए, जिन्हें तुम हल्का फुल्का पाते हो, अपने कूच के दिन और अपने ठहरने के दिन भी, और इनकी ऊन और रूओं और बालों से भी। इसने बहुत से सामान और एक वक्त मुकर्रर तक के लिए फायदे की चीजें बनाई हैं। ये है आयत नंबर 79 और 80। इनका उनवान है घर सुकून का मुकाम। यहाँ परिंदों के उड़ने के नाते से अल्लाह ताला ने हमें एक बात बता दी, और वो क्या कि अल्लाह ने परिंदों को जो साइज दिया है वो बिल्कुल इस चीज का तकाजा करता था कि वो उड़े। हम अगर अपनी अकल से पूछें, हमारा दिल चाहेगा कि परिंदे जो हैं ये तो ऊंट जितने बड़े होते। आप में से जिन लोगों को बर्ड से कोई दिलचस्पी, और अल्लाह करे कि हम कुछ ऐसी चीज़ें देख सकें कि सिर्फ आपको बर्ड्स के ऊपर एक प्रेजेंटेशन दिखाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। बर्ड्स की जो हड्डियां होती हैं ये वेटलेस होती हैं, परों को देखें इतने लाइट वेट होते हैं, क्यों कि ये उड़ सके। अगर परिंदा भारी होगा ना तो उड़ नहीं सकेगा। फिर इनके उड़ने की जो कैफियत है, इंशाल्लाह सूरत मुल्क के अंदर भी हम आए देख सकेंगे उसको, कि जब ये उड़ते हैं परों का खोलना और बंद करना, आज उस चीज को देख के लोगों ने जहाज बनाए। अगर आपको कभी प्लेन पे सवार होने के बाद विंग्स के पास जगह मिले तो आप बाहर जरूर देखिए, आप देखेंगे कि पूरा विंग एक होता है लेकिन उसके ऊपर फिर छोटी छोटी चीजें होती हैं, कभी एक विंडो खुलती है, कभी दूसरी खुलती है, कभी उसको स्ट्रेच करते हैं। ये बिल्कुल वही कैफियत है जिसको आप परिंदे के परों के खोलने और बंद करने से कर सकते हैं। ये किसके फैसले थे? अल्लाह ने हर चीज बना के दिखा दी कि देखो मैं हर तरह की तखलीक करने पे कातिर हूँ, ये उसकी शान है। फिर हवाओं के रुख पे चलना, फिर आप कभी परिंदों के उड़ने को देखें, ये तो आप अभी भी देख सकते हैं मगरिब के करीब, अगर आप बाहर खुल के देखें तो परिंदों के झुंड जा रहे होते हैं। आप कभी देखें तो ये यूं उड़ते हैं, अगर आप लोग इत्तेफाक करें वी शेप में होते हैं, एक आगे होता है फिर दो फिर दो, इस तरह सिमेट्रिकल। हमारी लाइनें सीधी नहीं होती और एक लीडर को फॉलो करते हैं। आपको कहता है कि एक आगे होता है बाकी सब है। ये जो अल्लाह के नबी ने हमें ये सिखाए तरीके कि एक अमीर हो, दो सफर में भी तीन लोग हैं तो उसमें से भी एक को अपना अमीर बना लो, और घर में अगर मर्द को अल्लाह ताला ने कवाम बनाया या मुल्क के अंदर एक शख्स को हुकूमत दी, तो ये सारे फितरत के असूल है। फितरत हमें सिखा रही है कि हर चीज एक है। जैसे भी हमने शहद की मक्खियों में देखा कि लीडर एक होता है बाकी उसके फॉलोअर्स है, और अगर वो सारे आगे निकल जाए तो वो उसकी बात ही कौन सुनेगा। आज हम मुसलमानों में डिसऑर्गेनाइजेशन हद से ज्यादा है, हम किसी एक कोठे पे बनना चाहते ही नहीं है। हम में से हर बंदे का दिल चाहता है कि वो लीडर बने, हम में से हर एक का दिल चाहता है कि हम इमाम बने, मामूर कोई नहीं बनना चाहता। लेकिन ये परिंदे जो हैं ये हमें दिखाते हैं, और एक आगे जाता है फिर बाकी उसके साथ जाते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर कुछ हकायक आपको आगे नोट करवाऊंगी कि आप बाकी सिर्फ परिंदों को देख के भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। फिर आप इनके अंदर देखिए कि ये पाँव होते हैं, उससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। कभी आप इनको बिजली के तारों के ऊपर बैठे हुए देखते? मैं ह्यूस्टन में एक क्लास लेने जाती हूँ जब फ्राइडेज को, तो वो बिल्कुल वही वक्त होता है जो मगरिब के आने जाने का, तो इतने परिंदे होते हैं उस वक्त ब्लैक कलर के, और पूरी दोनों तरफ जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं और उसके जो वायर उस पर बैठे होते हैं, तो एकदम देख के दिल हिलने लगता है कि हाँ इनको करंट ना लग जाए, लेकिन इनको कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला ने इनके लिए इस तरह के इंतजाम किए हैं कि ये कई कई घंटे चल सकते हैं, उड़ सकते हैं। जब ये परिंदे माइग्रेट करते हैं तो आपको पता है कि इनके बॉडी के अंदर जो फैट्स होती है ना, वो डिजोल्व होती है, वो घुल घुल के वो उतने दिन मुसलसल कई कई दिन बगैर खाए पिए ही उड़ते रहते हैं और मंजिल पे पहुंचते हैं। कमिटमेंट, फर्मनेस, मकसद है तो भूखे भी रहना पड़ेगा, प्यासे भी रहना पड़ेगा। हमें रोजे की हालत में चंद घंटे भूखा रखा जाए तो हमारा हाल देखने वाला होता है इफ्तारी के वक्त। लेकिन ये कायनात वाकई हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर पेश करती है कि अगर सिर्फ हम इन्हीं से अपनी जिंदगियों को रिलेट करने लगे तो बहुत ही सारी चीजें हम सीख सकते हैं। अगली चीज जो थी वो आप लोग हाईलाइट करेंगे आयत नंबर 80 में कि वल्लाहु जाल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, अल्लाह ने तुम्हारे घरों को सुकून वाली चीज बनाया। ये है वो चीज जिसे हर औरत जो है वो बहुत ज्यादा टची होती है, और वो क्या कि मेरा घर मेरी जन्नत। घर के तसव्वुर के साथ सुकून का लफ्ज आना चाहिए कि घर पुरसुकून होगा तो वो घर है। घर को पुरसुकून बनाने के लिए सबसे मेन किरदार औरत का होता है और ऑफ कोर्स उसके साथ शौहर का भी होता है। लेकिन आज घर पुरसुकून क्यों नहीं रहे, ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पे बात करने और सुनने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर हमारा एक लेक्चर कई मुख्तलिफ एंगल से कई डिफरेंट जगहों पे हो चुका। इस वक्त सिर्फ एक आपको दे देती हूँ ट्रेलर के तौर पे ताकि फिर आप बाकी खुद सुनना चाहें। ऐसे ही करते हैं ना, पहला सैंपल फ्री देते हैं फिर बाकी खुद सुनना पड़ता है। पहली उसकी घर के पुरसकून होने की जो पहली अटमोस्ट कोशिश है वो क्या है कि शौहर और बीवी का इंतखाब दुरुस्त हो। अगर जब रिश्तों का इंतखाब दीन के बगैर होने लगता है तो वो सारी दीवार टेढ़ी पड़ने वाली बात है। वो पिघल जाएंगी, वो खवातीन रुल जाएंगी, वो मर्द बेचारे सर फोड़ते रहेंगे, लेकिन घर में वो सुकून नहीं आएगा क्योंकि वो चीज जो पहले दिन से गलत हो गई। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास एक मर्द आया, बूढ़ा शख्स था, 7 जवान बच्चा था, आके उनकी शिकायत की, कहने लगा ये मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, ये नाफरमान है, इसको समझाइए। उन्होंने कहा अच्छा। वो जवान लड़का कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन मैं आपकी हर बात मानूंगा लेकिन शर्त यह कि आप मेरी बस एक बात का जवाब दे दें। कहा क्या? कहा मुझे ये बताइए कि बेटा होने के नाते मेरे क्या हक थे इस बाप के जिम्मे। तो उस पर हजरत उमर ने कहा कि हाँ, तेरा सबसे पहला हक तेरे बाप के जिम्मे क्या था कि तुझे एक अच्छी माँ देता, दूसरा यह था कि तुझे अच्छा नाम देता, और तीसरा यह था कि तेरी अच्छी तरबियत करता। इस बात को सुन के फिर उस बेटे ने कहा फिर मैं आपको ये बता दूं कि मेरे बाप ने मेरे ये तीनों ही हक अदा नहीं किए। क्यों? इसने एक मजूसी औरत से शादी की, फायर वर्शिपर, जो खुद आग की पूजा करने वाली थी, मुझे अच्छी माँ नहीं दी इसने। दूसरी बात, इसने मेरा नाम जवाला रखा। जवाला कहते हैं जैसे ये मकड़ा, जाले लगते हैं ना घरों में, वो भी इसी से ही है, यानी बेकार नाम, जानवरों के नाम पे नाम रखते थे। और चूंकि मेरी माँ मुशरिक थी उसने मेरी अच्छी तरबियत नहीं की। ये बातें सुन के हजरत उमर ने कहा उस शख्स को कि इसको ले जाओ, कसूर इसका नहीं तुम्हारा है। तो बात यह है कि जब रिश्तों का इंतखाब होता है वो वक्त हमारी सबसे बड़ी इम्तिहान की चीज होती है। ये वो वक्त होता है जब हमारे असल पोल खुलते हैं, हम कितने दीनदार हैं और हम कितने दुनियादार हैं, हमें दौलत कितनी प्यारी है और हमें इखलाक कितना प्यारा है। बड़े बड़े लोग उस वक्त खुल के सामने आ जाते हैं। तो जो बुनियाद टेढ़ी पड़ती है फिर उसको या तो सीधा करना पड़ता है या तोड़ना पड़ता है। इसके अलावा टेढ़ी बुनियाद पे आप सीधा घर नहीं कायम कर सकते। तो अल्लाह ताला ने यहाँ सुकून की बात की है। इंशाल्लाह ये मौजू सूरह रूम में भी आएगा, जिन पे वो हमारा लेक्चर हो चुका है। जो लोग उससे पहले फायदा उठाना चाहें तो इंशाल्लाह वो वेबसाइट से सुन सकते हैं। फिर आप देखिए घर को खुश बनाने के लिए बाज दफा हम घर और होम में फर्क नहीं रखते। हम चाहते हैं घर को म्यूजियम बना दो, सारा डेकोरेशन पीसेस से भर के उसको ऐसे लगे कि जैसे ये कोई स्टोर है। असल खुशी जो होती है ना वो दिल की खुशी होती है। जब आपका दिल खुश होता है ना तो आपको एक छोटे से घोंसले पे भी आप खुश है। पीछे परिंदे की बात है, आप यहाँ नोट करें कि परिंदों के साथ घरों की बात आ गई। परिंदों का क्या है? घोंसला, तिनकों से बना हुआ ना। यकीन करें अगर शोहर बीवी हम मिजाज हों, अल्लाह के खौफ वाले हों, अल्लाह के दीन से मोहब्बत करने वाले हों, तो वो खोली में भी बैठे होंगे ना तो वो एक दूसरे को देख के खुश होंगे। और बाजवा बड़े बड़े घर हैं। और एक खातून थी, इतनी पहनी ओढ़ी रहती थी, इतनी सजी संवरी, घर बेहतरीन कि वाकई कोई दूर से देखे तो रश करे कि ऐसी औरत की किस्मत हो। लेकिन एक दिन मेरे पास बैठी तो आंसू से रो रही, फूट फूट के रो रही। क्या कहती? जेवर है सब है लेकिन शोहर मुंह नहीं लगाता, शोहर ऐसा है, ये है, दिल नहीं मिला हुआ। अब वो दौलत उसको खाने को पड़ती है। और वो कहती थी मेरे जैसी किस्मत किसी की ना हो, लोग उसको कहते हैं हाय आप जैसी किस्मत सबकी हो। तो ये चीजें कोई खुशी नहीं देती। जब हम अपने मामलात को इतना मटीरियलिस्टिक अप्रोच पे ले आते हैं तो फिर चीजें तो आप देखिए कि इंसान को खुशी नहीं देती। बीमार होंगे तो आपको इंसान की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे ही वक्तों में फिर इंसान जो है अल्लाह ताला के इन हुक्मों के ऊपर अमल करने को अपनी जिंदगी की बुनियाद बनाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तुम्हारे पास किसी दीनदार का पैगाम आए कि मन तरदाउ ना दीन ना हो व खुलू का हो, कि जिसके दीन और इखलाक को तुम पसंद करो, तो फरमाए अपनी बेटियों के निकाह कर दिया करो। अगर तुम ये नहीं करोगे तो दुनिया में फितना फैलेगा, और आज वो फितना फैल रहा है। शादी के बगैर के ताल्लुकात का फितना क्या? ये फितना नहीं है। जब माँ बाप लड़कियां देते वक्त तो ये सोचें कि हमें डॉक्टर और इंजीनियर चाहिए और बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले चाहिए और लैंडलॉर्ड चाहिए और कुछ नहीं तो अपने ही खानदान के चाहिए, तो फिर आप सोचिए कि फिर जब इतने लड़कों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो फिर नतीजा क्या होगा कि अनमेरिड लोग बैठे होंगे, फिर उसके बाद जो फितने उठेंगे वो तो सभी जानते हैं। इसी तरह आपने फरमाया कि चार वजूहत से औरत से निकाह किया जाता है और उसके अंदर दीन, माल, हुसन और उसका नसब है, लेकिन आपने फरमाया कि तू दीन वाली के साथ कामयाब हो जा। और असल कामयाबी घरों की, यकीन करें, वो शोहर बीवी का ताल्लुक है, वो माँ बच्चे का ताल्लुक है, वो सास ससुर का ताल्लुक है, या कोई ताल्लुक है, जहां बीच में दीन आने लगता है वहां हुसन आने लगता है। अल्लाह करे कि हमारी जिंदगियों में ये दीन आ जाए और हमारी जिंदगियां पुरसकून गुजरें, ताकि हम सुकून के साथ फिर अल्लाह की रजा के मुताबिक दुनिया से जाएं और अपने हिस्से का काम कर सके। फिर इसमें एक ये घरों की भी बात हुई, कहा कि तुम्हें गर्मी से बचाते हैं। अमूमन हम सोचते हैं कि लिबास जो बंदे को सर्दी से बचाता है, लेकिन इन आयात में आपने देखा कि तुम्हें गर्मी से बचाते हैं। आज की लेटेस्ट रिसर्च है, प्योर सनलाइट होती है वो इंसान की स्किन पे आती है तो कैंसर पैदा होता है। आज आप देखिए कि इस्लाम ने औरत को अगर ढकने की बात की तो ये असल में उसको कैंसर से बचाने की चीजें थी। घरों के अंदर आप देखें कि जब आप सुकून से रहते हैं, लेकिन वो लोग जो बहुत खुले सड़कों पे फिरते हैं तो बाद दफा वो ज्यादा मुश्किलात का शिकार होते हैं। मुझे जैसे लगता है कि अल्लाह ने हमारे लिए बिल्कुल वही किया जो करना चाहिए था। हमें नहीं पता, जैसे सरकश बच्चे होते हैं ना, उनको समझ नहीं आती कि माँ ये हम पे पाबंदी क्यों लगा रही है। इसी तरह कुछ इंसान सरकश होने लगते हैं, लेकिन अगर एक दफा वो सरेंडर कर दें तो उनको पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला ने उनके लिए कितने खूबसूरत इंतजाम किए हैं। वल्लाहु जाल लकुम मिम्मा खलक दिलालन, और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए अपनी पैदा करदा चीजों में से साए बनाए हैं, और इसी ने तुम्हारे लिए पहाड़ों में गार बना दिए, और इसी ने तुम्हारे लिए कुर्ते बनाए हैं जो तुम्हें गर्मी से बचाए, और ऐसे कुर्ते भी जो तुम्हें लड़ाई के वक्त काम आए, और वो इस तरह अपनी पूरी पूरी नेमते दे रहा है कि तुम हुक्म बरदार बन जाओ, फिर भी अगर ये मुंह मोड़े रहे तो आप पर सिर्फ खोल कर बयान कर देना काफी है। यारिफूना नेमत अल्लाह, ये अल्लाह की नेमत को जानते पहचानते हुए भी इसके मुनकिर हो रहे हैं, और इनमें से अक्सर लोग जो हैं वो नाशुक्रे हैं। ये थी आयत नंबर 81 से 83, 81 से 83। इसका अनवान क्या है? मारफत इंसान के अंदर दो चीजें पैदा करती है, यानी जब इंसान अल्लाह को पहचान लेता है ना तो उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक एहसान मंदी और एक अंदेशा। एक तो इंसान अल्लाह के एहसानों के अंदर अपने आप को दबा हुआ महसूस करता है, हर लम्हे उसको लगता है कि मेरे रब ने मुझे जितना कुछ दिया है क्या मैं भी इसके बदले में कुछ कर पाया हूँ कि नहीं, और साथ ही साथ इंसान के दिल में अंदेशे आने लगते हैं, खौफ आने लगते हैं, किस बात के कि अगर अल्लाह ने ये नेमतें मुझसे वापस ले ली मुझे कौन वापस दिलाएगा। ऐसे वक्त में फिर इंसान जब गिड़गड़ा के अल्लाह के सामने गिरता है तो इसको इबादत कहते हैं, और इबादत जो है वो असल में इंसान का अल्लाह के आगे अपनी बेबसी को साबित करना और इसका इजहार करना है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अल्लाह की नेमतों को पाने के बावजूद ना शुक्रे रहते हैं। दुनिया में कोई इंसान उनको थोड़ा सा दे ले दे तो थैंक यू और शुक्रिया कहते हुए नहीं हटते, लेकिन अल्लाह ताला कितनी नेमतों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला कभी ना कभी इस तरह का तजुर्बा करवाता है कि उनसे नेमते छीन लेते हैं, और जब नेमते छीनते हैं तो उस वक्त वो ना शुक्रे हो जाते हैं। वयौम नबअसु मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदा, और जिस दिन हम हर उम्मत में से एक गवाह खड़ा करेंगे, फिर काफिरों को ना तो इजाजत दी जाएगी ना इनसे तौबा करने को कहा जाएगा, और जब ये जालिम अजाब देख लेंगे फिर ना तो इनसे हल्का किया जाएगा और ना वो ढील दिए जाएंगे, और जब मुशरिकीन अपने शरीकों को देख लेंगे तो कहेंगे हमारे परवरदिगार यही हमारे वो शरीक हैं जिन्हें हम तुझे छोड़कर पुकारा करते थे। वो इनको जवाब देंगे तुम बिल्कुल झूठे हो। उस दिन वो सबके सब आजिज होकर अल्लाह के सामने इताअत का इकरार पेश करेंगे, और जो बुहतानबाजी किया करते थे वो सब उनसे गुम हो जाएगी। अल्लज़ीन कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह, जिन्होंने कुफर किया और अल्लाह की राह से रोका, हम इन्हें अजाब पर अजाब बढ़ाते जाएंगे, ये बदला होगा इनकी फितना परदाजियों का। ये थी आयत नंबर 84 से 87। इसका अनवान है क़यामत के दिन हकीकत खुल जाएगी। आज दुनिया में बहुत सारी चीज़ें छुपी भी हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन जब हकायक सामने आएंगे तो वो लोग जो सारी ज़िंदगी एक दूसरे को शिर्क पे माइल करते रहे या कायल करते रहे वो सारे वापस पलट आएंगे, और नतीजा क्या होगा कि सबको पता चल जाएगा कि असल ज़ात अल्लाह ही की थी। व यौम नबअसु फ़ी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अन्फुसिहिम, और जिस दिन हम हर उम्मत में उन्हीं में से इनके मुकाबले पर गवाह खड़ा करेंगे तो तुझे इन सब पर गवाह बना कर लाएंगे, और हमने तुझ पर ये किताब नाजिल फरमाई है जिसमें हर चीज का शाफी बयान है और हिदायत और रहमत और खुशखबरी है मुसलमानों के लिए। आयत नंबर 89। इसका उनवान है मानने वालों के लिए किताब में खुशखबरियां हैं। इस आयत को हाईलाइट कीजिए और आप महसूस करें कि सूरत नहल में बार बार कुरान पाक में हिदायत और रहमत का तذکرہ किया गया। सवाल पैदा होता है कि किताब हिदायत कब बनती है, रहमत कब बनती है और बुशरा कब बनती है। पहली बात यह है कि किताब बंदे के लिए हिदायत तब बनती है जब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती है। गाइड बुक तो वही होती है ना। आप देखिए कि आपको कहीं भी जाना हो और आप वहाँ जाने के लिए इंटरनेट से डायरेक्शन पेपर निकालें और वो पेपर आपको समझ ना आए, वो स्पेनिश जुबान में है, वो डच लैंग्वेज में है, क्या आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं? क्या आप उसकी रोशनी में किसी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं? बिल्कुल इसी तरह हम सब सिराते मुस्तकीम पे चलना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने इस किताब के अंदर जन्नत में जाने के रास्ते बता दिए, लेकिन हम अरबिक जुबान में पढ़ते हैं और हमें जुबान समझ नहीं आती, तो नतीजा